ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
आने वाले समय में हम जब किसी भी देश की प्रगति की बात करते हैं तो किसी भी देश की प्रगति उसकी सूचना और प्रौद्योगिकी की प्रगति पर निर्भर करती है, और भारत इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर गंभीर दिखाई देता है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते वर्षों में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार से देश के कोने कोने में नागरिकों को न सिर्फ लाभ पहुंचा है बल्कि इस क्षेत्र ने रोजगार और अन्य तरह के अवसरों को भी पैदा किया है। सरकार सूचना और प्रौद्योगिकी का हर नागरिक तक लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं और कई तरह के कदमों पर काम कर रही है, और विशेष रूप से अब फोकस ये है कि देश के जो टीयर टू और टीयर थ्री शहर हैं और साथ ही जो देश भर के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्तार हो। और इस संबंध में आज इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हमने संसद में एक प्रत्युत्तर भी सुना, और इसी हवाले से आज हम कार्यक्रम में चर्चा भी कर रहे हैं कि देश में जो खासतौर पर टीयर टू और टीयर थ्री शहर हैं वहां तक सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार को देकर और देश में रोजगार के अवसरों को पैदा करके किस तरह से नए अवसरों को तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सूचना और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जितेन जैन। जितेन जी, बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
जितेन जी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जैसा कि कहा कि सरकार ने 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इस तरह के केंद्रों की स्थापना की है, और इन केंद्रों में से 57 केंद्र टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार टीयर टू और टीयर थ्री शहरों को सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के मामले में किस तरह से गंभीरता से ले रही है, और कितना आवश्यक है इन शहरों में सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्तार?
देखिए, पिछले 20 सालों में सभी सरकारों ने भारत के अंदर एक सूचना क्रांति लाने के लिए एक हर संभव कोशिश करी है। पिछले 10-12 सालों में मुख्य रूप से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि उनका खुद की एक दिलचस्पी टेक्नोलॉजी में लेकर बहुत है, वो टेक्सेवी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका हमेशा से एक ये फोकस रहा कि भारत के अंदर जो सूचना क्रांति की जो एक गति है उसको बहुत तेजी से उसको आगे लेकर जाया जाए, क्योंकि हम जिस गति से चल रहे हैं और जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था है, जो मौके हमारे पास हैं, जो जनसंख्या का अनुपात है, उसके हिसाब से कम 10 गुना 12 गुना तेजी से उसको करना चाहिए था। और इसलिए उन्होंने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत करी, जहां पे जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सारी जो जन सुविधाएं हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करना, राशन कार्ड इशू करना, कोई सब्सिडी का ट्रांसफर करना, कोई रजिस्ट्रेशन करना, वो सारी सुविधाओं को एक ऑनलाइन मोड के अंदर डाला गया। और साथ में एक ये भी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का कहीं ना कहीं एक तरह से ये मुख्य बिंदु था कि सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के अंदर जो सूचना क्रांति में भारत सरकार जो इतना बड़ा निवेश कर रही है उसमें उसके लाभ की, उसके फायदों की भागीदारी ग्रामीण इलाकों में बैठे हुए लोगों को, छोटे शहरी लोगों को भी बराबर मिले। ऐसा न हो कि उसका जो लाभ है मात्र शहरों में बैठे हुए पढ़े लिखे और अमीर व्यक्तियों को मिले, जैसा कि पहले के कई दशकों में हुआ। इसीलिए जो सबसे पहले जिन सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया गया वो ऐसी सुविधाएं थी जिसके लिए सबसे ज्यादा धक्के छोटे शहरों में और ग्रामीण शहरों में बैठे वाले व्यक्तियों को खाने पड़ रहे थे, जैसे कि राशन कार्ड बनाना है, घंटों लाइन में लगी है, दिनों तक इंतजार कीजिए, फाइल ले जाके दीजिए, ये कागज वो कागज, तब जाके आपको राशन कार्ड मिलता था। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि छोटी छोटी जो आम सुविधाएं हमें शहरों में बिना सोचे मिल जाती, एक बैंक कि हर गली मोहल्ले में आपको कॉलोनी में एक बैंक मिल जाएगा, लोग छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए उनको शहरों तक जाना पड़ता था कि मैं अपने बैंक में पैसा जमा कराऊं, किसी और के हाथ में पैसा दूं, अकाउंट खोलने के लिए पूरे कागज नहीं होते थे। तो सरकार ने तीन चीजों के ऊपर बहुत बड़ा फोकस पिछले 12 सालों के अंदर किया। पहला, एक अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने के लिए हर छोटे शहर में, हर पंचायत में, हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट वहां पर पहुंचाया गया। दूसरा, जो मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन है वो आज गांव में अवेलेबल है। तीसरा, आधार, हर व्यक्ति के पास अपनी एक पहचान हो। उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हर छोटी छोटी चीज को बनाने के लिए आप हर तरह के क्षेत्र के बैंक अकाउंट खोलना है, आपको आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है, आप नया फोन कनेक्शन बैंक, आप सब काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब आपके बायोमेट्रिक हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका चेहरा है, पहचान है। तो एक बहुत बड़ा उसने कागजों की कमी, जो एक भ्रष्टाचार जो नए नए सर्टिफिकेट बनाने के लिए था, नए नए कागज पैदा करने के लिए था, ये सब चीजें समाप्त हो गई। तीसरा जनधन अकाउंट खोले गए कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे बैंकिंग सेक्टर से बाहर था, तो सरकार की कोशिश ये भी थी कि इन सभी व्यक्तियों को एक मूलभूत तरीके से ढांचागत रूप से अंदर एक जो हमारा बड़ी बैंकिंग अर्थव्यवस्था है स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी उसके अंदर लाया जाए। उनके फ्री में अकाउंट खुलवाए गए, उसमें मिनिमम बैलेंस डाला गया ताकि सरकार की तरफ से अगर कोई सब्सिडी कोई स्कीम का लाभ भी दिया जा रहा है वो पैसा पूरा का पूरा उनके पास पहुंचे। तो आज पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गई, गैस की सब्सिडी, फार्म सब्सिडी, सब ऑनलाइन मोड के अंदर आ रहा है। तो कोशिश सरकार की ये थी कि जनधन आधार और मोबाइल की जो एक प्रयुक्ति बने उसका इतना बड़ा लाभ हो कि उसके सबसे बड़े लाभकारी जो है गरीब व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है उसका लाभ उठा सके। शहर वाला को तो वैसे ही मिल रहा है, आपके पास बैंक पहले से है, मोबाइल इंटरनेट आपके पास तो पहले से है, पर गरीब गांवों तक पहुंचाया गया। और इसलिए पहुंचाया गया कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को जिस तेजी से गति मिलेगी वो गति तभी मिल सकती है कि उसमें सभी की भागीदारी हो, खासतौर पर जो छोटे शहरों में लोग बैठे, खासतौर में जो गांव में जो लोग बैठे। तो उसके लिए अगर आज आप देखिए, आज एटीएम वगैरह आपको चाहिए नहीं चाहिए, पैसा ट्रांसफर करना आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप गांव में बैठे बैठे यूपीआई का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पा रहे हैं। पेमेंट लेना और देना बहुत सरल हो गया है। सामान बेचने के लिए आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है, आप कहां बैठे बैठे आज ई कॉमर्स के नेटवर्क में सारे छोटे शहर, नॉर्थ ईस्ट में नीचे आप वेस्टर्न इंडिया में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, हर छोटे गांव के लोग वहीं बैठकर अपना व्यापार कर रहे हैं, वो शहरों की तरफ नहीं जा रहे। तो माइग्रेशन रुका है। जो आदमी अच्छे इलाज के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए मजबूरी में बाहर जाता था, आज वो कम हो रहा है। क्यों? अच्छी शिक्षा आपको ऑनलाइन मोड के अंदर, डिस्टेंस लर्निंग के अंदर अच्छे से अच्छे कॉलेजों, स्कूल कॉलेजों के उसमें ऑनलाइन कोर्सेज में अवेलेबल है। तो आप बड़े बड़े देखिए, आप छोटे शहरों से ज्यादा एडमिशन आपको आईआईटी में हो रहे हैं, आपकी कोचिंग वहां से बड़ी हो रही है, सिविल सर्वेंट छोटे शहरों से ज्यादा आ रहे हैं। हर छोटे छोटे इलाज के लिए शहर भागना पड़ता था, आज वो नहीं है। आप लोकल अस्पतालों में जाइए, वहां के हर सरकारी अस्पताल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर किसी न किसी बड़े अस्पताल से कनेक्ट कर दिया गया है। तो वो एक बहुत लाभ उनको मिल रहा है। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं कि अब आपको एक व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इनिशिएटिव है, इतनी मदद आपको उन्हीं रीजनल ज्योग्राफीज में, छोटे गांवों में या पास के शहर में अवेलेबल होगी कि अब आपको अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल।
तो ये मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी एक नई पहचान बन रही।
और आपने जैसा कि बताया कि मूलभूत सुविधाओं तक लोगों की पहुंच हो सके, इस मामले में भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी ने और साथ में सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सरकार के कदमों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। हम अगर रोजगार के पक्ष को देखें तो जैसा कि आज संसद में राज्य मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में 54 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं, और हम हालिया योजनाओं पर भी बात करें तो देखा गया है कि विभिन्न जो प्रौद्योगिकी आधारित या टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स और इनोवेशन हैं या जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी संख्या को हमने बढ़ते हुए देखा है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में इन बीते वर्षों में या आने वाले समय में जो प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स हैं उनके बढ़ने की कितनी संभावना है, और कैसे भारत में ऐसे आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
ये सच है कि शिक्षा एकमात्र माध्यम नहीं है आपके निर्माण का, शिक्षा सहायक होती है आपके व्यक्तित्व के निर्माण में। मगर ये बात भी सही है कि एक किसी व्यापार को करने के लिए कोई मूलभूत शिक्षा आपके पास होनी चाहिए, एक समझ आपके पास होनी चाहिए, उतने परिपक्व होने चाहिए। तो जब से अगर आप देखिए, मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको बताऊं, जितने एजुकेशनल वीडियोज अवेलेबल हैं, गांव में बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसके पास इतना आर्थिक व्यवस्था नहीं थी कि वो शहर में जाकर अच्छी पढ़ाई कर सके, वो आज अपना काम करने के साथ साथ शाम को अपने हिसाब से अपने आप ऑनलाइन कोर्सेज करके अपने आप को उस शिक्षा क्रांति का हिस्सा बना पा रहा है। ये जब होता है तो वहां से इनोवेशन की शुरुआत होती है। कितनी स्टार्टअप गांव से आ रही है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहां बैठ के कोई मिसाइल बना रहे हो या ड्रोन बना रहे हो तो ये आपकी पहचान है। लोग छोटी छोटी इनोवेशंस कर रहे हैं किसानों को हेल्प करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, प्रिसिजन फार्मिंग के लिए, टेली हेल्थ डेटा को एक साथ शहरों में ट्रांसफर करने के लिए मास स्केल के ऊपर, तो वैक्सीनेशन के ऊपर। जैसे आपने ये कहा कि भारत के अंदर जो कोविन का वैक्सीनेशन हुआ, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट मात्र शहर में बैठे व्यक्तियों को मिला, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपके मोबाइल नंबर पर गांव में बैठे व्यक्ति के पास भी आया, धक्के नहीं खाने पड़े। और जो क्यू का सिस्टम था वो अमीर व्यक्ति के लिए भी वही था और गरीब व्यक्ति के लिए भी वही था, इसलिए था क्योंकि टेक्नोलॉजी पे एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अवेलेबल था। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रांति है इसमें समाज को सबकी समान भागीदारी, समान अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसका लाभ लेते हुए गरीब जो व्यक्ति हैं, जो मात्र जो मेरे हिसाब से टीयर 3 या टीयर 4 सिटीज या गांव दराज के इलाकों में जो रह रहे हैं, उनको सबसे बड़ा जो है उनको एक अपॉर्चुनिटीज का निर्माण उनके लिए हो रहा है। और वहां से हो सकता है जॉब क्रिएशन शुरू में आपको इतना अच्छा ना दिखे, मगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन, खुद के व्यापार का, खुद की छोटी छोटी स्टार्टअप का, खुद का छोटा मोटा धंधा करने का, वो इस समय ज्यादा इस समय आपको देखने में आएगा कि छोटे छोटे लोग अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं, अगर आज एक हैंडीक्राफ्ट का जो व्यापारी है अगर वो गांव में बैठ के अपना सामान सीधा सीधा बेच रहा है, पहले एक बड़ा व्यापारी उससे खरीद कर 80% मुनाफा खुद कमाता था, उसको छोटे मोटे दाम पर खरीदता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे पता नहीं कैसे भेजना है, शहर में कहां बेचना है। आज ग्राहक उसके दरवाजे पर खड़ा है ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, ले जाने के लिए पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनी उसके दरवाजे के ऊपर खड़ी है। तो जो 70-80% मुनाफा जो बड़ा सेठ खा जाते थे, आज वो उस गरीब व्यक्ति को उसके गांव में बैठे हुए, तो रोजगार का, श्रम का और अपॉर्चुनिटीज का निर्माण तो हुआ है। मैं कहूंगा शायद अर्थव्यवस्था उसे नौकरी नहीं दे पाई, पर उसे अपने आप में एक व्यापारी बना दिया, और वो ज्यादा बेहतर है, वो आगे चल के 3 लोगों को और नौकरी देगा। तो ये जो बहस हमारे समाज में चल रही कि आईटी ने कितनी जॉब क्रिएट करी, मुझे लगता है ये गलत बहस है। आईटी ने कितने मौके पैदा करे, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर देखने का नजरिया होगा।
भारत में अगर हम देखें तो पहले तो हमने देखा कि सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ, भारत नेट जैसी परियोजनाओं से गांव के कोने कोने तक इंटरनेट की पहुंच हुई, और दूसरा हमने देखा कि लोगों तक इंटरनेट की पहुंच के बाद एक अभूतपूर्व वृद्धि इंटरनेट उपभोक्ताओं के लोगों की बढ़ी, और तीसरा हमने देखा कि इस बढ़ती वृद्धि से लोगों ने लाभ उठाया, जैसा कि आपने अभी चर्चा भी की। तो हम अगर स्वरोजगार की और बात आपसे करना चाहें, जैसे अब देखा जाता है कि गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर जैसे केंद्रों से जहां एक तरफ गांवों के लोग, आसपास के लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वहीं एक रोजगार का बड़ा जरिया ये बनकर उभरा है। ऐसे ही शहरों में भी सूचना और प्रौद्योगिकी या इंटरनेट की पहुंच से बहुत से स्वरोजगार के मौके छोटे छोटे खुले हैं। तो किस तरह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है, और कैसे आने वाले समय में भारत अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो आईटी सेक्टर सर्विस सेक्टर के रूप में जाना जाता है, इस सर्विस सेक्टर में अपनी कैसे बड़ी भूमिका निभा सकता है?
हर बड़ी यात्रा का शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। भारत ने जो कुछ कदम 10 साल पहले लिया, एक बहुत बड़ी यात्रा का निर्माण हो चुका है। 3 उदाहरण आपको दूंगा। कोविन सर्टिफिकेशन, जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल रहे थे, जेब में हर जगह कागज घसीटने की जरूरत नहीं है, पानी में गीला फटा कागज की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल था। कई देशों ने भारत से उस व्यवस्था को मांगा। यूपीआई का जब शुरू में निर्माण हुआ तो कई लोगों ने आपत्ति जगाई, आप क्या बनाएंगे, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। पर जब ये बना तो पहला फायदा छोटे व्यापारी को हुआ। जैसे यूपीआई आया, अगर आपने किसी को 100 रुपए की पेमेंट करी है तो तुरंत 100 रुपए 3 सेकंड में आपके अकाउंट में पहुंच रहे हैं बिना एक पैसा कटे। तो जो अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देशों की हिडन कंपनियों की मोनोपोली खत्म हुई, वो 10 साल पहले उठाया गया छोटा सा कदम था। दूसरा उसका फायदा क्या है, आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, आपको किसी POS मशीन की जरूरत नहीं है। गांव में आज छोटा छोटा किराने का व्यापारी, फूड देखने वाला, सब्जी विक्रेता, छोटा मोटा चाट पकौड़े की दुकान लगाने वाला, ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी आज QR कोड का इस्तेमाल कर रहा है। तो उन लोगों को आप एक अर्थव्यवस्था के अंदर ले, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, ये वो छोटे लोग हैं जो 10-20 हजार रुपए महीने की सेल करके अगर मान लीजिए 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा था, उसको कोई लोन देने के लिए 10 हजार रुपए का तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। आज अगर वो 3 लाख रुपए कमाने वाला छोटा व्यापारी अपना वो QR कोड का पूरी हिस्ट्री दिखा के बोलता, साहब मेरे को 20 हजार का लोन दे दो, आज सारे बैंक उसको लोन देने को तैयार। तो उसको अब किसी साहूकार आगे जाके 20% का लोन 40% ब्याज पे लेने की जरूरत नहीं, उसको भी 6% में मिलेगा। प्लस क्योंकि आप ये छोटा काम कर रहे हैं, सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का वो स्टार्टअप बेनिफिट देने को तैयार है, सीड कैपिटल देने को तैयार है। सोचिए एक छोटे व्यापारी के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो ये फायदा इस सूचना क्रांति का हुआ है। और ये जो अवसर का जो सबसे बड़ा लाभ है वो छोटे शहरों में और गांव में रहने वाले व्यक्तियों को मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी जीत है। हमारा आधार का जो नेशनल आईडी प्लेटफॉर्म है, आज सारे देश अफ्रीका में कई देशों में हमसे मांग रहे हैं। यूपीआई को आज दुबई, सिंगापुर, फ्रांस जैसी इकोनॉमीज के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
बिल्कुल। तो आने वाले समय में इस आईटी की क्षमता को किस तरह से हम भुना पाते हैं, और जिस प्रगति से हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस प्रगति से हम और कुछ नए मुकाम हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने अपनी टिप्पणी और अपने विचार रखे।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।